पृष्ठ संख्या 46, अध्याय 6, पंजाब घराना। पंजाब में मृदंग की परंपरा काफ़ी प्राचीन तथा भारत एवं पाकिस्तान दोनों देशों में व्याप्त है। खेद है कि प्राचीन पाकिस्तान के मृदंग वादकों का इतिहास उपलब्ध नहीं है। लाला भवानी दीन, जिन्हें पंजाब घराने के कलाकार भवानी दास के नाम से संबोधित करते हैं, पंजाब की परंपरा के आदि प्रवर्तक थे। पोथी में भी पंजाब की मृदंग की परंपरा के आद्य पुरुष का नाम भवानी दास ही बताया गया है। प्रामाणिक रूप से मृदंग के जिन प्राचीन कलाकारों का नामोल्लेख हकीम मोहम्मद करम इमाम की पुस्तक मौदन उल मूसिकी सन 1855 ईस्वी में मिलता है, उसमें कृपा मृदंगवादक तथा घासीराम मृदंगवादक के नाम प्रमुख हैं, जिन्होंने औरंगजेब तथा मोहम्मद शाह रंगीले के युग से संबंधित बताया गया है। आचार्य कैलाश चंद देव बृहस्पति की पुस्तक मुसलमान और भारतीय संगीत में भी उनका उल्लेख मिलता है। नाम से ये दोनों कलाकार पंजाबी लगते हैं। मध्य युग से ही पंजाब के अनेकों हिंदू एवं मुसलमान मृदंग वादक अपनी वादन निपुणता के कारण देश भर में प्रसिद्ध हो गए थे। पंजाब के गुरुद्वारों में आज भी कुछ इन्हें गिने मृदंग वादक विद्यमान हैं, जो भजन कीर्तन के साथ ही ध्रुपद धमार गायकी की संगति में भी अपना दखल रखते हैं। 15वीं, 16वीं तथा 17वीं शताब्दी में मृदंग का कौन सा बाज बजाया जाता था, वह किस प्रकार बजाया जाता था, उसमें स्वतंत्र वादन किस प्रकार किया जाता था या नहीं, और किया जाता था तो किस प्रकार उसका प्रस्तुतिकरण हुआ करता था, इन सब बातों से हम अनभिज्ञ हैं। अतः औरंगजेब के युग का कृपा मृदंगवादक या मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार का घासीराम मृदंगवादक अपनी वादन किस प्रकार प्रस्तुत करते रहे होंगे, यह हमारे लिए केवल अनुमान का विषय है। हमारे पास मृदंग की जो संचित जानकारी बोल बंदिशों के रूप में आज उपलब्ध है, वह केवल 2 शती ही पुरानी है। पंजाब घराने के प्रमुख प्रतिनिधि कलाकारों के मान्यता अनुसार वर्तमान समय का पंजाब घराना लाला भवानी दास से संबंधित है। यह उनके द्वारा किस प्रकार से प्रशस्त हुआ, इसकी पीठिका में भी एक कहानी छिपी है जो कलाकारों में इस प्रकार प्रसिद्ध है। एक बार लाहौर के सूबेदार ने भवानी दास को निमंत्रण देकर अपने यहाँ बुलाया। सूबेदार उनके मृदंग वादन पर इतने मुग्ध हुए कि वे चाहने लगे कि वहाँ के कुछ स्थानीय कलाकारों को उनसे पखावज की शिक्षा मिले। उन्होंने लाला भवानी दीन से के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की। भवानी दीन जी यह सुनकर असमंजस में पड़ गए। लोगों का कहना है कि वे अपनी परंपरागत कला को सिखाना नहीं चाहते थे, परंतु यह बात मुझे योग्य प्रतीत नहीं होती। ऐसा विद्वान और महान व्यक्ति इतनी संकीर्ण मनोवृत्ति का नहीं हो सकता। पृष्ठ संख्या 47। उनके ना कहने का कारण कुछ और ही रहा होगा। उन दिनों पखावज की क्रियात्मक शिक्षा देने के पूर्व शिष्यों को ताल शास्त्र का पूर्ण शास्त्रीय ज्ञान कराया जाता था। कौन से प्रबंध के साथ कौन सी ताल बजेगी, उसे बजाने की क्या विधि होगी, इसका निर्णय निश्चित ताल के प्रयोग के द्वारा किस प्रकार और कब किया जा सकता है, तथा बोलों एवं वर्णों में लघु गुरु प्लुत का प्रमाण किस गणित से बिठाया जाएगा, आदि अनेक शास्त्रीय बातें मृदंग वादकों को क्रियात्मक ज्ञान के साथ साथ सिखाई जाती थी। विधर्मी एवं अशिक्षित लोग अपने शास्त्र की इन विशेषताओं को एवं गहनताओं को समझ सकने में असमर्थ होंगे। ऐसा सोचकर कि उन्होंने कदाचित उन लोगों को तालीम देना स्वीकार नहीं किया होगा। तत्पश्चात प्रदेश में शासक वर्ग का कूपभाजन बनने से कदाचित जान खोनी पड़े, इस भय से उन्होंने उन लोगों को सिखाना स्वीकार किया होगा। इस प्रकार लाहौर में कुछ वर्ष रह कर लाला जी ने वहाँ के स्थानीय कलाकारों को पखावज की तालीम दी। वहाँ रहकर उन्होंने वहाँ के लोक वाद्य दुक्कड़ पर एक नवीन बाज का भी आविष्कार किया और अपने पंजाबी शिष्यों को इस बाज की शिक्षा दी और इस प्रकार दुक्कड़ बाज का प्रचलन हुआ। इसी बाज का रूपांतर आगे चलकर उनकी शिष्य परंपरा की तीसरी पीढ़ी में तबले के बाज में परिवर्तित हुआ लगता है, क्योंकि विद्वानों में यह निश्चित मान्यता व्याप्त है कि पंजाब घराने का आधुनिक तबला दुक्कड़ बाज का ही परिष्कृत रूप है। यद्यपि यह सिद्ध हो चुका है कि कुदऊ सिंह तथा पंजाब इन दोनों परंपराओं के मूल प्रवर्तक लाला भवानी दीन जी ही थे, तथापि कुछ लोगों में यह धारणा व्याप्त है कि इन दोनों घरानों के प्रवर्तक दो पृथक व्यक्ति रहे होंगे। पंजाब घराने के प्रतिनिधि कलाकार उस्ताद अल्लाह रखा लाला भवानी दीन को भवानी दास कहते हैं। उनके अनुसार भी ये दो व्यक्ति हो सकते हैं। वैसे भी दो व्यक्तियों का एक ही नाम होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, किंतु विविध पुस्तकों में पर्याप्त प्रमाण मिल जाने के कारण यह शंका निर्मूल हो जाती है। हकीम मोहम्मद करम इमाम तथा फकीरुल्लाह भवानी दास को ताज खां डेरेदार तथा कुदऊ सिंह दोनों के गुरु बताते हैं। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में मथुरा के सुप्रसिद्ध पखावजी पंडित छेदाराम द्वारा लिखित हस्तलिपि पुस्तक में, जिसे एक शोध प्रबंध में पोथी के नाम से संबोधित किया गया है, पखावज की परंपरा का पूर्ण इतिहास उपलब्ध है। उन्होंने लिखा है कि लाला केवल किशन जी के पौत्र भवानी दास ने खब्बे हुसैन ढोलकिया को प्रतियोगिता में परास्त कर उसके पुत्र अमीर अली को अपना शिष्य बनाया। बाद में अमीर अली ने पंजाब में भवानी दास द्वारा आविष्कृत दुक्कड़बाज का प्रचार किया और अनेक शिष्य तैयार किए। पोथी के अनुसार ताज खां डेरेदार के पुत्र नासिर खां पखावजी को भवानी दास ने प्रशिष्य जानकी दास ने शिक्षा दी थी। जानकी दास भवानी दास के भतीजे टीका राम के शिष्य थे। बाद में नासिर खां बड़ौदा दरबार में नियुक्त हुए। पृष्ठ संख्या 48। श्री रॉबर्ट गोटलिब की पुस्तक द मेजर ट्रेडिशन ऑफ नॉर्थ इंडियन तबला ड्रमिंग में लेखक ने पंजाब घराने के उद्भव एवं विकास में भवानी दास का नाम आद्य प्रवर्तक के रूप में लिखा है, जो कि लेखक के अनुसार उस्ताद अल्लाह रखा की मुलाकात पर आधारित है। उस्ताद अल्लाह रखा खां पंजाब घराने के प्रतिनिधि कलाकार हैं। वे लाला भवानी दास को अपनी परंपरा का आद्य प्रवर्तक मानते हैं। वे उन्हें भवानी दीन नहीं वरन भवानी दास कहते हैं। अपनी भेंट में उन्होंने बतलाया कि लाला भवानी दास का नाम उन्होंने अपने गुरुमुख से सुना था। विविध ग्रंथों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जो ऐतिहासिक प्रमाण हमारे पास उपलब्ध है, उनमें कहीं भी ऐसा उल्लेख नहीं मिलता कि भवानी दीन और भवानी दास दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं। असंभव है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की ओर दीन जी को भवानी दीन नाम से संबोधित किया जाता रहा हो और पंजाब में उनके शिष्यगण उन्हें भवानी दास कहते रहे हों। अतः मेरी यह निश्चित धारणा है कि भवानी दीन, भवानी दास या भवानी सिंह एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम हैं, जिनसे पखावज के विविध घराने एवं परंपराएं अस्तित्व में आई हैं। श्री बाबूलाल गोस्वामी के अनुसार लाला भवानी दीन ने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद शाह रंगीले को लक्ष्य पर ने सुनाकर प्रसन्न किया था। आचार्य बृहस्पति ने भी रंगीले के दरबारी कलाकार के रूप में भवानीदास का उल्लेख किया है। बादशाह मोहम्मद शाह का शासनकाल सन 1719 ईस्वी से सन 1748 ईस्वी तक का था। अतः लाला भवानी दीन का समय 18वीं सदी का मध्यकाल रहा होगा। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आज का पंजाब घराना 18वीं सदी के मध्यकाल से प्रारंभ हुआ। इस घराने में पहले केवल पखावज की शिक्षा दी जाती थी, परंतु पिछले 100 वर्षों से अर्थात उस्ताद फकीर बख्श के समय से वहाँ तबला और पखावज दोनों का प्रचलन प्रारंभ हुआ और उसी समय से वहाँ तबले को भी महत्व मिलने लगा। आज तो यह स्थिति आ गई है कि इस घराने में पखावज नाम मात्र को रह गया है और यहाँ के कलाकार तबला वादक के रूप में विश्व में यश अर्जित कर रहे हैं। पंजाब घराने का विकास लाला भवानीदास अथवा भवानी दीन के शिष्य प्रशिष्यों के योगदान से हुआ है। सर्वश्री ताज खां डेरेदार, हद्दू खां लाहौर वाले, कादिर बख्श प्रथम तथा अमीर अली आदि भवानीदास के प्रमुख शिष्यों में से हुए, जिनसे पंजाब की परंपरा चली। अमीर अली ने दुक्कड़बाज का विशेष प्रचार किया था, ऐसा उल्लेख ब्रज की हस्तलिपि पोथी में स्पष्ट है। उस्ताद ताज खां डेरेदार के पुत्र नासिर खां पखावजी अपने समय के प्रसिद्ध कलाकार थे। उन्होंने अपने पिता के उपरांत मथुरा के पंडित जानकी दास से, जो कुदौ सिंह के गुरु भाई थे, शिक्षा ली थी। पृष्ठ संख्या 49। करम इमाम की पुस्तक मौदन उल मौसिकी के आधार पर पंडित भातखंडे जी ने अपनी पुस्तक संगीत शास्त्र भाग 4 की पृष्ठ संख्या 231 में लिखते हैं कि उस्ताद ताज खां के पुत्र उस्ताद नासिर खां कुदौ सिंह के समय के तथा उनकी बराबरी के कलाकार थे। उन दोनों में वादन प्रतियोगिता हुआ करती थी। उसी पुस्तक में उस्ताद नासिर खां की श्रेष्ठता प्रदर्शित करते हुए आगे लिखा गया है कि नासिर खां का हाथ कुदौ सिंह से थोड़ा कर्कश था, परंतु समझदारी में ताज खां और नासिर खां को कुदौ सिंह की अपेक्षा अधिक अच्छा ही कहा जाता था। मौदन उल मौसिकी के आधार पर भी मधुसूदन शरण बेदिल भी लिखते हैं कि नासिर खां और कुदौ सिंह में थोड़ा अंतर प्रतीत होता है। कुदौ सिंह की अवस्था प्रौढ़ होने के कारण उनका हाथ अत्यंत मुलायम तथा साफ था और नासिर खां का हाथ जवान और अल्पवयस्क होने के कारण दबंग और करारा है। नासिर खां के पिता ताज खां पखावज वादन में कुदौ सिंह से अधिक जानकारी रखते हैं। उन उल्लेखों से निष्कर्ष निकलता है कि पंजाब घराने के ये उस्ताद बड़े विद्वान और गुणी रहे होंगे। इन्हीं लोगों के प्रयास से पंजाब घराना विस्तृत हुआ, जो बाद में उस्ताद हुसैन बख्श, उस्ताद फकीर बख्श, उस्ताद करम इलाही, मियां मलंग, मियां कादिर बख्श आदि के प्रयत्नों से विशाल वृक्ष बनकर विस्तृत हुआ। पंजाब घराने के विकास में इन उस्तादों, उनके वंशजों एवं शिष्यों का अमूल्य योगदान रहा है। पखावज की वादन परंपरा में लाला भवानीदास के प्रमुख 5 शिष्य हुए। उस्ताद कादिर बख्श प्रथम, जिनके पुत्र मियां हुसैन बख्श, पौत्र मियां फकीर बख्श तथा प्रपौत्र मियां कादिर बख्श थे। दूसरे उस्ताद ताज खां डेरेदार, जिनके पुत्र नासिर खां उस्ताद कलाकार थे, वे मथुरा के पंडित जानकी दास के भी शिष्य थे। उस्ताद नासिर खां दीर्घकाल तथा जियाजी राव गायकवाड़ के राज्यकाल में बड़ौदा दरबार में रहे तथा बड़ौदा के कलावंत कलाकारों में रहकर अनेक शिष्य तैयार किए, जिनमें पंडित कांता प्रसाद प्रमुख हैं। उनकी वंश परंपरा में उनके पुत्र नासिर हुसैन, पौत्र नजीर खां आदि अच्छे कलाकार हुए हैं। तीसरे शिष्य एक अज्ञात हिंदू व्यक्ति थे जिनके शिष्य पंडित भवानी प्रसाद से ब्रज के मक्खनलाल ने कुछ शिक्षा ग्रहण की थी। चौथे शिष्य उस्ताद हद्दू खां लाहौर वाले थे जिनसे बनारस के पंडित बलदेव सहाय ने सीखा था। ऐसा पंजाब घराने के कलाकारों का दावा है और बनारस घराने के प्रतिनिधि कलाकार इस दावे का जोरदार खंडन करते हैं। पांचवें शिष्य अमीर अली थे जो खब्बे हुसैन ढोलकिया के पुत्र थे। भवानी दास ने खब्बे हुसैन को हराकर उसके पुत्र को अपना शिष्य बनाया था। अमीर अली ने पंजाब के दुक्कड़बाज का प्रचार किया, ऐसा उल्लेख पोथी में है। इन पांच शिष्यों के अतिरिक्त भी पंजाब की परंपरा में लाला भवानी दीन के अनेक शिष्य हुए, किंतु उनके विषय में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। पंजाब घराना हिंदुस्तान तथा पाकिस्तान दोनों देशों में फैला है, अतः लाला भवानी दीन की शिष्य परंपरा पाकिस्तान में भी विस्तृत हुई होगी, जिसके इतिहास से हम अनभिज्ञ हैं। पृष्ठ संख्या 50। लाला भवानी दीन जी के प्रशिष्य उस्ताद हुसैन बख्श के पुत्र उस्ताद फकीर बख्श के सैकड़ों शिष्य थे। उनके प्रमुख शिष्यों में उनके पुत्र कादिर बख्श, मियाँ करम इलाही, बाबा मलंग खां, उस्ताद फिरोज खां, उस्ताद कल्लन खां, उस्ताद मीरा बख्श घिघवालिया, उस्ताद महबूब बख्श आदि के नाम गिनाए जाते हैं। विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि उस्ताद फकीर बख्श के बाद सभी उस्तादों ने अपने शिष्य पखावज में न बनाकर तबले में तैयार किए, अतः इस परंपरा एवं घराने की आगे की तबला वादकों की पीढ़ी का वर्णन हम तबला अध्ययन के अंतर्गत ही करेंगे तथा इस परंपरा की तालिका भी उसी अध्याय में के अंत में आप देख सकेंगे। चूंकि आज पखावज वादन की प्रथा पंजाब से लगभग समाप्त हो चुकी है और मेरी जानकारी में वहाँ कोई श्रेष्ठ पखावज वादक नहीं है, अतः यह लिखना कि वहाँ के पखावज वादक की क्या शैली, विशेषता एवं पद्धति उन दिनों प्रचलित थी कठिन है।